हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी भूतों में सबसे भयानक और शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस की दुनिया में आपका स्वागत है। ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पाना आसान नहीं है, उन्हें केवल कुछ ऐसे हथियारों और मंत्रों से मारा जा सकता है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में ब्रह्म राक्षसों के बारे में कई दंत कथाएँ और कहानियाँ हैं। मैं हूं आपका होस्ट उमेश रोडके और आप सुन रहे हैं ब्रह्म राक्षस लव एंड रिवेंज ओनली ऑन अनसुलझे रहस्य। ये प्यार और विश्वासघात की कहानी है, एक अमीर जमींदार और एक चालाक महिला की, एक इंसान और एक जानवर की। संजय ठाकुर कमलापुर गांव के जमींदार के बेटे थे, जिस गांव में उसका परिवार प्राचीन काल से स्वामित्व रखता था। उन्हें सम्मान, प्यार और समृद्धि के साथ पाला गया था और उनके जीवन में प्यार के अलावा किसी और चीज़ की कमी नहीं थी। वह एक ऐसे महिला की खोज के लिए तरस रहे थे जो उनकी साथी बन सके और उनके सुख दुख को साझा कर सके। एक दिन उन्हें अपने महल में कुछ मेहमानों का स्वागत करना था, जिसमें कामिनी दास नाम की एक महिला भी थी। वह लंबे काले बाल और नीली आंखों वाली एक खूबसूरत महिला थी और उसने एक हरे रंग की साड़ी पहनी थी, जिससे वह एक फूल की तरह दिखाई देती थी। संजय पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो गए और मुस्कुराते हुए उनके पास पहुँचे। उसने खुद को जमींदार के बेटे के रूप में पेश किया और उसने उसका नाम पूछा और पूछा कि वह कहाँ से आई है। तो उस महिला ने बताया कि वह पासी के शहर से है और अपने चाचा के साथ यहाँ आई है, जो उसके पिता के मित्र भी थे। संजय उसकी आवाज़ और उसके शिष्टाचार से मंत्रमुग्ध था और संजय ने कामिनी को अपने आकर्षण और बुद्धि से प्रभावित करने की कोशिश की। संजय ने कहा कि उसे धन या प्रसिद्धि में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि केवल सच्चा प्यार पाने में है। कामिनी ने स्तब्ध होने का नाटक किया और उसने कहा कि वह भी ऐसा ही महसूस करती है कि सच्चे प्यार के सामने दौलत की कोई जगह नहीं होती। उसने संजय को बताया कि वह उससे बहुत प्रभावित है और वह अकेले ऐसे पुरुष है जिसने उसके दिल को छुआ है। संजय कामिनी के कबूलनामे से बहुत खुश हुआ और उसने उसे शादी करने के लिए कहा और वह मान गई। लेकिन उसने संजय से एक शर्त की मांग की। वह चाहती थी कि वह उसे अपनी आधी संपत्ति दहेज के रूप में दे दे। उसने कहा कि यह उसके लिए उसके प्यार का सबूत होगा और साथ ही में उनके भविष्य की सुरक्षा भी। संजय उसकी इस मांग से चौंक गया था, लेकिन वह उससे इतना प्यार करता था कि वह इसके लिए राजी हो गया। उसने अपने पिता की राय या अपने परिवार के विरासत की परवाह नहीं की, उसे केवल कामिनी को खुश करने की परवाह थी। संजय अपने पिता के पास गया और अपनी सगाई की घोषणा की। उसके निर्णय से उसके पिता क्रोधित हुए और संजय को फटकारते हुए अपना आशीर्वाद या संपत्ति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कामिनी एक लालची औरत दिखाई पड़ती है, जिसने तुम पर अपने हुस्न का जादू किया है और वह उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। पिता ने संजय को चेतावनी दी कि उसे अपनी पसंद पर पछतावा होगा और वह एक ऐसी महिला के लिए सब कुछ खो देगा जो उससे प्यार नहीं करती। संजय ने अपने पिता की बात नहीं मानी और उसने कामिनी के साथ भाग जाने का फैसला किया। संजय ने कुछ गहने और पैसे एक थैले में भर लिए और वह कामिनी को अपने साथ घोड़े पर ले गया। वे रात के मध्य में महल से दूर चले गए और पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ उन्होंने एक साथ एक नया जीवन शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि कामिनी के मन में कुछ और ही योजनाएं बन रही थी। वह संजय से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, वह केवल उसका पैसा और उसकी संपत्ति चाहती थी। कामिनी का विक्रम नाम का एक प्रेमी था, जो एक डाकू सरगना था। उसने संजय को मारने और उसकी संपत्ति हथियाने के लिए कामिनी के साथ साजिश रची थी। विक्रम एक चट्टान के पास उन दोनों का इंतजार कर रहा था, जैसे वे चट्टान के पास पहुंचे, कामिनी ने थकने का नाटक किया और संजय को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। वह घोड़े से उतरी और चट्टान के किनारे की ओर चल दी और उसने संजय को भी अपने साथ वहां आने के लिए बुलाया, यह कहते हुए कि वह उसे कुछ सुंदर दिखाना चाहती है। संजय ने उस पर आँख मूंद कर भरोसा किया और वह उसके पीछे चट्टान तक आ गया। वह उसके पास खड़ा हो गया और नज़ारा देखने लगा। उसने देखा कि उसके नीचे नदी पर चाँद चमक रहा है और ऊपर आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। संजय ने सोचा कि यह उसके जीवन का सबसे रोमांटिक पल है। वह कामिनी की ओर मुड़ा और बोला, कामिनी तुम इस दृश्य से कहीं अधिक सुंदर हो। तुम मेरी चाँद और मेरे सितारे हो। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। कामिनी दृष्टता से मुस्कुराई और बोली, संजय तुम कितने मूर्ख हो। तुम मेरे खेल के एक मोहरे के सिवा कुछ नहीं हो। तुम मेरे धनी बनने का टिकट हो। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से उसे चट्टान से धक्का दे दिया। संजय चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कामिनी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। कामिनी बुरी तरह हंसी और बोली, अलविदा संजय, अपनी मौत का आनंद लो। फिर उसने घोड़े की काठी से गहनों और पैसे का थैला लिया और विक्रम के ठिकाने की ओर भागी। इधर किस्मत को संजय के लिए कुछ और ही मंजूर था। वह गिरने से नहीं मरा। वह पेड़ की एक मोटी शाखा पर जा गिरा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह बुरी तरह जख्मी था और उसका काफ़ी खून बह रहा था और कुछ देर बाद संजय बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने देखा कि एक विशाल भेड़िया उसे घूर रहा है। भेड़िया उसके खून से आकर्षित हो गया था। भेड़िया जोर से दहाड़ा और संजय को अपनी भुजाओं से जकड़ लिया। उसने संजय की गर्दन पर और छाती पर कई बार बार किए। संजय को अपने शरीर पर भयानक दर्द महसूस हो रहा था। उसने वापस लड़ने की कोशिश की लेकिन वह बहुत कमज़ोर हो गया था। शरीर की पीड़ा में वह मृत्यु की कामना कर रहा था। उसे लगा कि उसका जीवन अब समाप्त होने जा रहा है। उसने कामिनी के विश्वासघात के बारे में सोचा और उसके नाम को श्राप दिया। संजय कामिनी और विक्रम से बदला लेना चाहता था। तभी एक चमत्कारी और भयानक घटना घटी। संजय की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर भेड़िए के शरीर में प्रवेश कर गई और वह एक ब्रह्म राक्षस बन गया, आधा मानव आधा पशु राक्षस। इसी बीच कामिनी गहनों और रुपयों का बैग लेकर विक्रम के ठिकाने पर पहुंची। विक्रम ने कामिनी को गले से लगाया। कामिनी ने उसको बताया कि उसने संजय को मार डाला और उसकी संपत्ति लेकर वो यहाँ आई है। उसने कहा कि अब वे हमेशा खुशी से रह सकते हैं। विक्रम ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उसकी चतुराई और साहस की प्रशंसा की और विक्रम ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द इस ठिकाने को छोड़ देना चाहिए और कहीं दूर चले जाना चाहिए जहाँ उन्हें कोई ढूंढ ना सके। तभी कामिनी ने विक्रम से कहा कि उसे जाने से पहले एक और काम करना है। उसने कहा कि उसे संजय के शरीर को जलाना चाहिए ताकि कोई उसकी पहचान ना कर सके या उसकी संपत्ति पर कोई दावा ना कर सके। विक्रम ने सर हिलाया और कहा कि वह उसकी इसमें मदद करेगा। उसने कहा कि उन्हें उस चट्टान पर वापस जाना चाहिए जहां उसने संजय को धक्का दिया था। विक्रम ने अपने साथ मिट्टी का तेल और माचिस पकड़ी क्योंकि उसे संजय के शरीर को आग लगानी थी और उसे जलकर राख होते हुए देखना चाहता था। कामिनी मुस्कुराई और कहा, यह एक अच्छा विचार है। उसे संजय के शरीर को जलता देखने में मज़ा आएगा और यही उसकी अंतिम विदाई भी होगी। वे दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर वापस चट्टान के पास पहुँचे। वे भोर के समय वहाँ पहुँचे जब सूर्य आकाश में उदय हो ही रहा था। उन्होंने नीचे नदी की ओर देखा इस उम्मीद में कि संजय का शव वहाँ पड़ा होगा, लेकिन उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। संजय का शव न पाकर वो दोनों सहम गए। वे सोच में पड़ गए कि संजय का शव कहाँ गया होगा। उन्हें लगा कि शायद कोई जंगली जानवर उसे खींच कर ले गया होगा या खा गया होगा, या हो सकता है नदी के बहाव में संजय का शव बह गया होगा। दोनों ने फैसला किया कि कुछ भी हुआ होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने जैसे योजना बनाई थी वैसा ही करेंगे। उन्होंने उस चट्टान के किनारे पर कुछ तेल डाला जहाँ कामिनी ने संजय को धक्का दिया था। उन्होंने माचिस जलाई और तेल पर फेंक दिया। तेल ने आग पकड़ ली और जोर से चटकने की आवाज़ के साथ चमकने लगा। उन्होंने संतोष और उल्लास के साथ आग को देखा। उन्होंने कहा कि किस तरह उन्होंने संजय को मूर्ख बनाया। वे बुरी तरह हंसे और संजय के भाग्य का मजाक उड़ा रहे थे। जब वे आग को देख रहे थे तो उन्हें अपने पीछे से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक विशाल भेड़िया एक चट्टान पर खड़ा था। भेड़िए के फर और दांतों पर खून लगा हुआ था, जिसकी लाल आंखें और सिर पर सिंह थे। वह एक राक्षस की तरह लग रहा था। कामिनी ने उस भेड़िए को पहचान लिया जिसने संजय पर तब हमला किया था जब वह नीचे गिरा था। उसने महसूस किया कि वह स्वयं संजय था जो ब्रह्म राक्षस बन गया है, और वह बदला लेने के लिए वापस आया है। ये नज़ारा देखकर वो दोनों सहम गए। वे डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भेड़िया उनसे तेज था। वो चट्टान से उछला और उनके ऊपर नुकीले पंजों से हमला किया। वे जमीन पर गिर पड़े और रेंगते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने उन्हें अपने हाथों से जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। ब्रह्म राक्षस ने उन्हें क्रोध से देखा और गहरी आवाज में कहा,
कामिनी और मित्रों, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे मार सकते हो, मेरा धन ले जाकर खुश रह सकते हो? तो तुम लोग गलत थे। तुम दोनों ने बहुत भयानक कृत्य किया है। तुमने मेरे अंदर के जानवर को जगाया है और अब तुम दोनों इसके सजावट हो गए।
और फिर उस ब्रह्म राक्षस ने उन्हें आग की ओर फेंका जो उन्होंने खुद शुरू की थी। वे हवा में उड़े और देखते ही आग में जिंदा जल गए और दर्द और पीड़ा से कराह उठे। हेलो श्रोताओं, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप में से कई लोगों ने अभी तक मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही कोई टिप्पणी या रेटिंग दी है, जिससे मैं जान सकूं कि मुझे कहाँ और कैसे बदलाव करने हैं। कृपया आज ही मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। यह मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। भूलिएगा मत, अभी जाके रेटिंग दीजिए। आपका धन्यवाद।